أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، پیارے دوستوں، السلام علیکم. ہم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اپنے اس کارے کرم میں احکام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. ہم اپنے آج کے کارے کرم میں اپنے پچھلے کارے کرم کی بات چیت کو ہی آگے بڑھائیں گے، یعنی ہم اپنے آج کے کارے کرم میں بھی ایک دو مسئلے جو مبتلات نماز سے سمبندھت رہ گئے تھے ان کو بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز جو آج کے کارے کرم میں بیان کریں گے، یعنی جو چیز ہماری نماز کو توڑ دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھتے سمے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے. اگر ایک نمازی بعض غیر شیعہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے سمے ہاتھوں کو باندھ کر نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے، یہ نماز اس کی سویکار نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. اس کے بعد جو چیز ہماری نماز کو توڑ دیتی ہے اور جو چیز نماز کے باطل ہونے کا کارن بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھتے سمے جب الحمدو کا سورہ سماپت ہو جائے تو اس کے بعد آمین کہے جان بوجھ کر. اگر ایک نمازی الحمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. لیکن اگر یہی کارے یعنی آمین کہنا تقیہ کے کارن ہو یا بھول چوک سے ایسا کہہ دیا ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نماز صحیح رہے گی. تو یہ وہ مسئلے تھے جو ہماری نماز کو توڑ سکتے ہیں، جو مبتلات نماز ہیں، جو ہماری نماز کے باطل ہونے کا کارن بنتے ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر ایک مسلمان نماز پڑھتے سمے نہ کرے تو اچھا ہے. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے بیان کریں، اس کے بعد ہم اپنی بات چیت کو آگے بڑھا دیں گے. سب سے پہلی چیز جو نماز میں کرنا مکروہ ہے وہ ہے آنکھوں کا بند کرنا. اگر ایک نمازی نماز پڑھتے سمے آنکھوں کو بند کر رہا ہے تو یہ کار اس کا مکروہ ہے. اس کے بعد جو چیز مکروہ ہے وہ ہاتھوں یا انگلیوں سے کھیلنا، جیسے انگلیوں کو چٹکانا، اس پرکار کی جو کارے ہوتے ہیں، یا ہاتھوں سے کھیلنا، ادھر ادھر ہاتھ چلانا، اس پرکار کی چیزیں نماز میں کرنا مکروہ ہے. اس کے بعد جو چیز مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان الحمد کا سورہ پڑھتے ہوئے یا دوسرا سورہ پڑھتے ہوئے یا نماز کا کوئی اور ذکر پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جائے. چپ ہو اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کی بات سننے لگے، یعنی اگر نماز پڑھتے سمے انسان دوسرے کی بات کو سننے کے لیے کچھ دیر کے لیے چپ ہو جائے تو اس کی نماز میں یہ کار کرنا مکروہ ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلے کارکرم میں بتایا تھا کہ بعض سمے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت دیر تک چپ رہ جائے تو اس کی نماز کی صورت بگاڑ دیتی ہے. اگر یہ چپ رہنا بہت دیر کا ہو جائے اور نماز کی صورت بگڑ جائے اس سے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن اگر کچھ دیر کا ہے تو یہ کار کرنا مکروہ ہے اور انسان کو نماز میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ہر وہ چیز جو ایشور سے لو لگانے میں دوری کا کارن بنتا ہو، جو خضوع خشوع سے دوری کا کارن بنتا ہو، نماز میں کرنا مکروہ ہے. ایک اور چیز جو نماز میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے چہرے کو قبلے کی طرف تھوڑا سا مڑا لے، یعنی اگر جیسے ہمارے سامنے بالکل قبلہ ہے تو تھوڑا سا ادھر یا ادھر موڑنا، اگر یہ تھوڑا سا موڑا جا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. لیکن اگر بہت زیادہ موڑ دیا جائے تو نماز کے باطل ہونے کا کارن بنتا ہے. جیسے کہ یہاں پر آیت اللہ سیستانی یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے سمے چہرے کو قبلے کی طرف سے موڑا جا رہا ہے تو اگر اس کو اپنے پیچھے کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی کیول چہرہ اتنا موڑا کہ پیچھے کی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو یہ کرنا مکروہ ہے. یعنی اگر پیچھے کی چیز دکھائی نہ دے تو موڑنا مکروہ ہے، اور اگر پیچھے کی چیز دکھائی دینے لگے تو یہ اس کی نماز کے باطل ہونے کا کارن بن جائے گا. تو یہ وہ چیز تھی جو نمازیں مکروہ تھی. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو نمازیں مکروہ ہیں، جیسے داڑھی سے کھیلنا، थूकना। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें जो मकरूह हैं। मकरूहात के बारे में और भी जानने के लिए हम तौज़ुल मसाइल या इस प्रकार की किताबों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने मुबतलात नमाज के अध्याय को बंद करेंगे। इसके बाद जो हमारी बातचीत होगी वो होगी यात्री की नमाज के बारे में, कि यात्री के अगर कोई मुसलमान यात्रा कर रहा है तो उसकी नमाज की स्थिति क्या होगी, क्या वो कोई विशेष तरीके से नमाज़ पढ़ेगा या उसकी नमाज वैसे ही होगी जैसे वो आम दिनों में नमाज़ पढ़ता आया है। यात्री की नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ईश्वर ने कुरान में फरमाया है, वएज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ फ़ला जुनाह अलैकुम अन तक़सुरू मिनस्सलात, कि अगर तुम यात्रा पर जाते हो, ज़मीन पर चलते फिरते हो और मुसाफरत करते हो तो तुम्हारे लिए इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपनी नमाज को कसर कर दो। तो कुछ विशेष शर्तें हैं, कुछ विशेष शर्तों के साथ कुछ विशेष नमाज़ें होती हैं जो कसर होती हैं। यानी हर वो नमाज जो 4 रकती है, जैसे जोहर की नमाज, जैसे असर की नमाज, जैसे ईशा की नमाज, तो जो रकत 4 रकती नमाज़ें हैं कुछ विशेष शर्तों के साथ, अगर एक इंसान मुसाफिर है, एक इंसान यात्री है, तो कसर हो जाएगी। कसर का अर्थ ये होगा कि हर 4 रकती नमाज को इंसान 2 रकत पढ़ेगा। वो शर्तें कौन सी हैं हम आपके सामने एक के बाद एक पहले ऐसे ही बताएंगे, उसके बाद उससे संबंधित विस्तृत मसलों को आपके सामने एक के बाद एक बयान करेंगे। सबसे पहली शर्त ये है, जब इंसान एक मुसाफिर कहलाएगा, जब उसकी यात्रा नमाज के कसर हो जाने का कारण बनेगी, तो सबसे पहली शर्त ये है कि वो जिस यात्रा पर जा रहा है, जिस सफ़र पर जा रहा है, उसका सफ़र कम से कम 8 फरसख का हो। 8 फरसख किसे कहते हैं? यहाँ पर फरसख को हमारे फुकहा ने, बास फुकहा ने 45 किलोमीटर बताया है और बास फुकहा ने 44 किलोमीटर बताया है। इसलिए अगर हम फरसख की सही अवधि या सही दूरी का सही पता लगाना चाहें तो हमारे लिए आवश्यक यह है कि पहले हम ये देखें कि हम किस मुज्तहिद की तकलीर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी ये कहते हैं, उनके यहाँ फरसख का मतलब होता है 44 किलोमीटर। यानी अगर कोई इंसान आयतुल्लाह सिस्तानी का मुकल्लिद है, उनकी तकलीद कर रहा है, तो उसके लिए 8 फरसख की दूरी 44 किलोमीटर की होगी। तो सबसे पहली शर्त यह भी कि इंसान कम से कम 8 फरसख की दूरी की यात्रा करने का इरादा रखता हो। उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो ये कि जिस समय यात्रा उसने आरंभ की थी, कोई भी समय, जिस समय इंसान आरंभ कर रहा है यात्रा के, उसी समय उसका यह इरादा रहा हो कि कम से कम 8 फरसख जाएगा, ये उसकी यात्रा उसका इरादा रहा हो। उसके बाद तीसरी शर्त यह है नमाज के कसर होने के लिए, तीसरी शर्त यह है कि हद तरखुस तक पहुंच जाए। हद तरखुस से पहले इंसान की नमाज कसर नहीं होगी। हद तरखुस क्या है, इसको हम आगे अब जब विस्तृत रूप से मसले बयान करने लगेंगे तो बयान करेंगे। उसके बाद जो चीज़ हमारी यानी जो शर्त है नमाज से कसर होने के लिए, ये है कि इंसान यात्रा के बीच में, जिस समय यात्रा उसने आरंभ की थी, यात्रा के बीच में अपने इरादे को बदल ना दे। और ये जो बदल रहा इरादा कि 4 फरसख पहुँचने से पहले, यानी अगर 4 फरसख पहुँचने से पहले अगर इरादा बदल रहा है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी यह है नमाज कसर होने के लिए शर्त यह है कि जिस समय इंसान यात्रा को आरंभ कर रहा है, 4 फरसख से पहले अपनी यात्रा के इरादे को तोड़ ना दे और उस इरादे से फिर ना जाए। और उसके बाद एक और शर्त जो हमारी नमाज के कसर होने के लिए कारण बनती है वो ये है कि जिस समय इंसान ने अपनी यात्रा को आरंभ किया था तो उस यात्रा में वो अपने वतन न पहुँचे, यानी वतन जहाँ पर उसका वतन हो वहाँ से न गुज़रे, या किसी ऐसे स्थान पर न पहुँचे जहाँ पर उसका 10 दिन तक ठहरने का इरादा रहा हो। ये शर्त है नमाज से कसर होने में। यानी अगर इंसान वतन में पहुँच गया है या ऐसे स्थान पर पहुँच गया है जहाँ उसका 10 दिन रुकने का इरादा है, तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी। उसके बाद एक और जो शर्त है वो ये है कि जिस समय इंसान यात्रा पर जा रहा है उसकी ये यात्रा पाप के लिए ना हो, या खुद यात्रा पाप के लिए नहीं लेकिन उस यात्रा में पाप हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति पेश आती है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी। उसके बाद जो शर्त है कि इंसान बंजारा या खानाबदोश ना हो, यानी जो लोग एक जिनका कार ही है, उनका जीवन ही ऐसा होता है कि वो यात्रा करते रहते हैं, कभी एक स्थान पर, कभी दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान पर, इस तरह चलते रहते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसकी नमाज कसर नहीं होगी। उसके बाद जो शर्त ये है, जो शर्त है नमाज से कसर होने के लिए, वो ये है कि उसका जो नमाजी है, जो मुसलमान जा रहा है, उसका कार यात्रा ना हो। तो अगर ये 8 शर्तें जो हमने आपके सामने एक के बाद एक बयान की, अगर एक ये 8 शर्तें एक यात्रा के अंदर पाई जाती हैं, तो उसकी यात्रा सही होगी और उसमें उस नमाज को कसर पढ़ना होगा। और अगर इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं होती है, एक भी शर्त कम रह जाती है, तो उसकी यात्रा शर्ई यात्रा नहीं कहलाई जाएगी और उसमें नमाज उसको पूरी पढ़ना होगी। सबसे पहली शर्त, तो हमने जैसे आपके सामने बताया, हमने कहा था कि आपको विस्तृत रूप से सब मसले बयान करेंगे। सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान जिस समय यात्रा कर रहा है, उसकी यात्रा की सीमा कम से कम सीमा 8 फरसख की हो। अगर इंसान 8 फरसख जा रहा है, तभी उसकी नमाज कसर होगी। अगर इंसान एक तरफ से जब जिस समय चल रहा है, तो अगर 8 फरसख पहुंच जाता है, तो उसकी नमाज कसर हो जाएगी और उसको 2 रकात नमाज पढ़नी होगी, या कम से कम 4 रकात, कम से कम 4 फरसख जाता है और उसके बाद 4 फरसख वापस आना, जो दोनों मिला के 8 फरसख हो जाते हैं। तो अगर इस तरह से उसकी दूरी है, तो उसकी नमाज कसर होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे बास फुकहा ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान इस तरह से यात्रा करे कि मसलन जाए 3 फरसख जाए, उसका लौटते में 5 फरसख लौट गया, यानी किसी ऐसे रास्ते से जा रहा है जहाँ पर 3 फरसख जाने का पड़ता है और लौटने में किसी ऐसे रास्ते से आ रहा है जिसमें 5 फरसख लौटने पड़ता है, तो कुल मिला के दोनों भले ही 8 फरसख हो जाते हैं, लेकिन ये 8 फरसख की दूरी उसकी नमाज से कसर का कारण नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पर आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा ये है कि वो कहते हैं कुल्लन 8 फरसख होना चाहिए, चाहे वो 3 फरसख जाके 5 फरसख वापस आ रहा हो या 4 फरसख 4 फरसख कर रहा हो। अगर उसकी कुल सीमा 44 या 45 किलोमीटर हो जाती है, चाहे 22 किलोमीटर या 22.5 किलोमीटर जाना और 22.5 किलोमीटर आना, या 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना, ये फतवों की भिन्नता के आधार पर है। अगर ऐसा हो जाता है, तो उसकी नमाज कसर होगी और उसको कसर नमाज पढ़नी होगी, यानी हर वो नमाज जो 4 रकत थी उसको 2 रकत पढ़नी होगी। उसके बाद ये प्रश्न उठता है, ये जो हमारी यात्रा की सीमा है, शुरू कहाँ से हुई, कहाँ से हम आरंभ करें, कहाँ से हमारा हमारी यात्रा मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि यात्रा की सीमा आरंभ होगी शहर की अंतिम दीवार से, यानी अगर हमारा शहर या हमारा गांव इस प्रकार का है जिसके अंत में दीवार खिंची हुई है, तो जिस जगह से दीवार समाप्त होती है, वहाँ से हमारी यात्रा आरंभ होगी और उसके बाद वहाँ से 8 फरसख माने जाएंगे। लेकिन अगर दीवार ना हो, अगर जैसे आजकल के हमारे शहरों में, हमारे गांव में, अधिकतर शहरों और गांव में ऐसे ही होता है कि दीवार नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर हम जो है अपनी सी यात्रा का आरंभ कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर दीवार नहीं पाई जाती उस शहर में या उस गाँव में दीवार नहीं पाई जाती है, तो उसका अंतिम घर, जो उसका अंतिम घर होगा उस शहर का या उस महल्ले का, वहाँ से हमारी यात्रा की सीमा और हमारी यात्रा की मात्रा जुड़ना शुरू होगी। उसके बाद इंसान अब यात्रा पर चल चुका है, यानी इंसान एक मुसाफिर है, वो अपने यात्रा पर चल चुका है। अब यात्रा पर चलने के बाद उसको शक होता है कि उसकी यात्रा जो थी वो 8 फरसख हुई है या नहीं हुई, यानी हम अपने घर से निकले, घर से निकलने के बाद एक निश्चित दूरी तक पहुँचे, निश्चित दूरी तक पहुँचने के बाद हमको ये संदेह हुआ, हमको ये शंका हुई कि अब जो हम आए हैं इतनी दूर, हमारी यात्रा 8 फरसख हुई है या नहीं हुई है, तो ऐसे स्थान पर हमारा क्या दायित्व है, हमारे लिए क्या मसला बन के आता है। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर उस इंसान के लिए तहकीक करना, जस्तजू करना, जांच पड़ताल करना बहुत कठिनाई का कारण ना बनता हो, यानी आसपास से पूछ सकता हो या कोई ऐसा माध्यम हो उससे जिससे अंदाज़ा लगा सकता हो कि कितनी दूरी है, मसलन अगर कार या बाइक से जा रहा है तो उसके स्पीडोमीटर या किलोमीटर के में जो रीडिंग होता है उससे पता लगा सकता हो, तो अगर मशक्क़त का कारण नहीं है, तो उसको चाहिए कि पहले पता लगाए, अध्ययन करे, उसके बाद अपनी नमाज के कसर या पूरी पढ़ने के बारे में फ़ैसला करे। और अगर उसके लिए मशक्क़त का कारण है, कठिनाई के कारण है, वो पता नहीं लगा सकता है, उसका पता लगाना कि किस दू कितनी मात्रा भर आया है, वो 8 फरसख यानी 44 या 45 किलोमीटर उसकी मात्रा हुई है या नहीं हुई, अगर बहुत मशक्क़त का कारण बन रहा है, कठिनाई का कारण बन रहा है, तो उसको चाहिए कि अपनी नमाज को पूरा पढ़े, उसको कसर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई, अगर कठिनाई के कारण नहीं बन रहा है तो पता लगाए, उसके बाद जैसा पता चले उस अनुसार से अपनी नमाज को पढ़े। अगर 8 फरसख यानी 44 या 45 किलोमीटर हो जाता है तो कसर नमाज पढ़े, और अगर नहीं होता है तो पूरी नमाज पढ़े। लेकिन अगर कठिनाई के कारण है तो उसको चाहिए कि नमाज को पूरा पढ़े, वो कसर नमाज नहीं पढ़ सकता। ये तब है जब शंका हो इंसान को कि इतनी मात्रा भर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है। अगर यहाँ पर ये मसले काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी हम गांव में रहते हैं, एक दूसरे गांव तक तो जाने के दो रास्ते हैं, एक रोड से रास्ता है, एक पगडंडी वाला रास्ता है। जो पगडंडी का रास्ता है वो छोटा रास्ता है, जो रोड वाला रास्ता है वो बड़ा रास्ता है। अगर पगडंडी के रास्ते से जाया जाए तो 8 फरसख नहीं बनती, यानी 4 फरसख, कम से कम 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना नहीं बनता है। और अगर रोड के रास्ते से जाया जाए तो 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना बन जाता है, या एक साथ 45 किलोमीटर या 44 किलोमीटर बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी ये जो दूरी है गांव के बीच की, हम कैसे जोड़ेंगे, पगडंडी वाले रास्ते से जोड़ेंगे या सड़क वाले रास्ते से जोड़ेंगे? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं, यहाँ पर देखा ये जाएगा कि जिस इंसान ने अपनी यात्रा आरंभ की थी वो किधर से गया था। अगर यात्रा आरंभ करने वाला पगडंडी के रास्ते से गया था तो उसकी यात्रा की दूरी भी पगडंडी के रास्ते से जोड़ी जाएगी। यानी अगर पगडंडी के रास्ते से 8 फरसख यानी 44 या 45 किलोमीटर होता है, या कम से कम 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना मिला के 8 फरसख होता है, तो उसकी नमाज़ कसर होगी। अगर नहीं होता है तो उसकी नमाज़ पूरी होगी। लेकिन अगर यही नमाजी, यही इंसान, यही मुसलमान रोड के रास्ते जाता है, तो अगर रोड के रास्ते से उसकी सीमा, उसकी मात्रा, उसकी यात्रा 8 फरसख या कम से कम 4 फरसख जाना और 4 फरसख आना हो जाता है, तो उसकी नमाज़ कसर होगी और उसको पूरी नमाज नहीं पढ़ सकता है, उसको 2 रकत नमाज़ पढ़नी होगी, हर उस रकत को जो 4 रकती थी। इसके अलावा हमारे यात्री की नमाज़ के बारे में और भी बहुत से मसले हैं जिसको हम अपने इस कार्यक्रम में आगे भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को ईश्वर के सुपुर्द करता हूँ, हमारी प्रतीक्षा कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।